आमोस अध्याय चार। फिर प्रभु कहता है, आमोस अध्याय चार पद एक, हे भाषान के गायों, ये वचन सुनो। वे बछड़ों की पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें गायों का झुंड कहता है और उनके लिए तिरस्कार का भाव प्रकट करता है। आमोस अध्याय चार पद एक में आगे लिखा है, तुम जो समरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती। इसे स्पष्ट होता है कि कंगालों पर बहुत अधिक अंधेर होता था। क्यों परमेश्वर बार बार इसके बारे में शिकायत करता है? आमोस अध्याय चार पद एक के अंत में लिखा है, और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो कि ला दे हम पिए। प्रकट है कि धनवानों और गरीबों में ऊंच नीच की भावना थी। यही भावना आज बहुत से देशों में शाप और विनाश का कारण है, जहां गरीबों की सुधि नहीं ली जाती, क्योंकि परमेश्वर उनमें रुचि रखता है। आमोस अध्याय चार पद दो, परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारी संतान मछली की बांसियों से खींच लिए जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अशूर बहुत निर्दयी लोग थे। इतिहास लिखता है कि जब अशूरों की सेना नगरों को घेर लेती थी, तब अनेक नगरों के वासी उनके हाथों में पड़ने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेते थे। इसका एक उदाहरण मसादा है। अशूरों का अभ्यास ये था कि वे अपने बंदियों की देह का अंग भंग कर देते थे, जैसे कान काटना, शरीर का कोई भाग काटना आदि। एक बात जो अशूरी अपने कैदियों के साथ करते थे, वे मछली पकड़ने का कांटा उनके होठों में या उनकी नाक या कान में फंसाकर अपने देश को ले जाते थे। जब तुम धीमे होते हो, तब कांटा तुम्हें नाक से, होठ से या कान से खींचता है, और ये भविष्यवाणी है, तुम मछली की बंसी से खींच लिए जाओगे। ऐसा ही हुआ। अशूरों ने जब सामरिया वासियों को बंदी बना लिया, तब वे उन्हें कांटे में फंसाकर अपने देश ले गए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे। आमोस अध्याय चार पद तीन और चार, और तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतेल में आकर अपराध करो। जिस स्थान पर याकूब ने परमेश्वर से पहली बार भेंट की थी, उसने कहा था, निस्संदेह परमेश्वर यहां पर है और मैं नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने उसे मूर्ति पूजा का स्थान बना दिया, जो उत्तरी राज्य में मूर्ति पूजा का केंद्र बना। बेतेल को चले। आमोस अध्याय चार पद चार और पांच, और गिलगाल मूर्ति पूजा का स्थान में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपना स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इसराइलियों, ऐसा करना तुमको भावता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर उनके ऊपर आने वाले दंड के बारे में कहता है। दंड देने में परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि वे लौट आए। परमेश्वर बहुत दफा न्याय या ताड़ना करता है, ताकि हमें विनाश के रास्ते से लौटा लाए। इब्रानियों अध्याय 12 पद 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। परंतु जब तक आप बच्चे हैं आप इसे नहीं समझते। जब तक आप माता पिता नहीं बन जाते तब तक आप इसे नहीं समझ पाते हैं। मैंने सोचा मेरे पिता मुझे बुद्धू बनाते थे जब वो कहते थे, बेटा इस बात से मुझे तुमसे ज्यादा चोट लगी। मैं विश्वास नहीं करता था जब तक मैं पिता नहीं बना, और तब मैं समझा उनका वास्तव में क्या अर्थ था। जब आप अपने बच्चे को दंड देते हो तब वास्तव में दर्द आपको होता है, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी भलाई की खातिर ताड़ना करना आवश्यक है, नहीं तो हो सकता है वे अपने को बर्बाद कर ले। आप उन्हें दुख देना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें सिखाना तो है ही कि उनके आचरण से क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आप ताड़ना करने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो बहुत दुखदायी बात ही क्यों ना हो। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है, चाहे वो कितना ही दर्दनाक कार्य हो। परमेश्वर कहता है, बदलो, मैं दंड देना नहीं चाहता, मैं तुम पर दया दिखाना चाहता हूं, मैं दया से खुश होता हूं, दंड से नहीं। मैं पिता होने के कारण ये जानता हूं, मैं सदा कोई ना कोई अवसर खोजता हूं कि तुम्हें दंड ना दूं। मेरा स्वभाव बहुत नम्र है, इसलिए कह दो मुझे क्षमा कर, मैं उन्हें विवाद करने का अवसर दूंगा, परंतु कठोर चेतावनी के साथ, आगे को सावधान। परमेश्वर अपनी संतान की ताड़ना करके खुश नहीं होता है, परंतु ये हमारे लाभ और भलाई के लिए है कि हम उसके निकट आ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उस देश की नाना प्रकार से ताड़ना की। ओ, हम कितना गलत समझते हैं। जब भी ताड़ना या दंड दिया जाता है हमारे मनों में क्रोधित परमेश्वर की छवि बनती है, जैसे मैंने अपने पिता की मुझसे नाराज वाली छवि बनाई थी, क्योंकि मैं उनको नहीं समझता था। ताड़ना के बाद मैं अक्सर अपने कमरे में जाता और रोना आरंभ करता। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं नहीं समझता कि मेरा कुत्ता भी अब मुझसे प्यार करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तब मैं सोचता कि मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि तब तो उन्हें अवश्य अफसोस होगा, और आप कल्पना करते हैं कि वे आपकी आरती के चारों ओर खड़े होकर रो रहे हैं। ये एक बच्चे का भावुक विलाप है। आदम की वाटिका में आदम के पाप करने के बाद प्रभु दिन के ठंडे समय उसके साथ टहलने आया। आदम ने अपने आप को उसकी उपस्थिति से छिपा लिया, क्योंकि उसने जाना कि वो नंगा था। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? वो किसी को पकड़ने आए पुलिस वाले की पुकार जैसी आवाज नहीं थी, परंतु एक दिल टूटे पिता की सुबकती आवाज थी। परंतु बहुत दफा हम पढ़ते और सोचते हैं, ओह वो आ गया और अब हमारी गर्दन जकड़ेगा, तुम कहां हो? नहीं, इस पद को आप ऐसे पढ़े कि परमेश्वर की आवाज की पीड़ा को सुन सके। आदम, ये तूने क्या किया? परमेश्वर पूरे मानव जाति पर आदम के पाप का असर देख सकता था, जिसमें आप और मैं भी सम्मिलित है। आदम के कार्य से हमने और मानव जाति ने क्या क्या ना सहा। आदम तू कहां है? जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और उसका उद्देश्य सदा यही होता है कि हम स्वयं विनाश के पथ से हटकर परमेश्वर की ओर मुड़े। परमेश्वर जानता है उस पथ पर चलना अपने आप को नष्ट करना है, इसलिए परमेश्वर ने ये बातें उनसे कही। आमोस अध्याय 4:6, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। उसने भोजन सामग्री की कमी भी कर दी, इस पर भी वे परमेश्वर की ओर न फिरे। आमोस अध्याय 4:7, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। उसने मौसम को भी अनिश्चित करना आरंभ किया। आमोस अध्याय 4:7-9 और जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वो सूख गया, इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए अकाल के कारण। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लहू और गेरुआई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, जब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। उसने टिड्डियां और मक्खियां भी भेजी, परंतु परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरकर न आए। आमोस अध्याय 4:10-12 मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी महामारी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसे उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग और भूकंप से उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के न्याय की चेतावनी को नहीं सुना, और क्योंकि वे अपने बुरे कामों से नहीं बदले। आमोस अध्याय 4:12 में आगे लिखा है, हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। ये परमेश्वर के साथ मित्रता की भेंट के लिए नहीं, दंड के लिए उपस्थित होना है, जो बड़े से बड़ा दंड होगा। हे इस्राएल, परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जा। ये आवश्यक और खास है कि हम में से हरेक तैयारी करे, क्योंकि हम में से हरेक आखिरकार एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:12-13। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सब मरे हुओं का और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। इब्रानियों अध्याय 9:27, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, कोई भी बच नहीं सकता, निश्चय ही बिना बचे एक दिन हम में से हरेक परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, और वो विस्मित करने वाला अनुभव होगा, क्योंकि आप पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होंगे। आमोस अध्याय 4:13, देख पहाड़ों का बनाने वाला। परमेश्वर ने कहा, सूखी भूमि दिखाई दे। आमोस अध्याय 4:13 में आगे लिखा है, और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। सेनाओं के परमेश्वर जगत के सृष्टिकर्ता यहोवा के सम्मुख उपस्थित होने के लिए तैयार हो जाए।